राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
बालक बनते हैं ऐसे मार्ग में लग जाए तो बहुत बड़े संत महात्मा बन सकते हैं। गीता आदि ये ग्रंथ कंठस्थ करने के हैं। गीता बहुत छोटा सा ग्रंथ है, इसमें इतने विचित्र भाव भरे हुए हैं। मेरे को अभी तक बड़े बड़े विचित्र भाव मिलते हैं। बहुत वर्ष हुए मेरे को गीता पढ़ते हुए, परंतु अब भी गीता में नई नई बातें मिलती हैं, नई नई विचित्र विचित्र बातें मिलती हैं। ऐसा ज्ञान का अथाह समुद्र है कि जिसका कोई पार पा नहीं सकता। देखते हैं तो शब्द विन्यास पद विन्यास जो लिखा है बहुत विचित्र है। तुलसीकृत रामायण का ऐसा ही है और भगवद गीता का, ये दो ग्रंथ बहुत ही विचित्र ग्रंथ है, बड़े सुगम है। भगवान कृष्ण का भगवद गीता, भगवान राम जी की रामायण। राम जी ने करके बता दिया, कृष्ण भगवान ने कह करके बता दिया। यदि आचार्य श्रेष्ठ इस श्रेष्ठ ऐसी बातें बताई है, गृहस्थ में कैसा रहना चाहिए ये भगवान राम जी ने बता दिया। भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करें, माता पिता के साथ बर्ताव कैसे, मित्रों के साथ बर्ताव कैसे और शत्रुओं के साथ बर्ताव कैसा करें, सभी आदर्श वस्तु बता दिया है। तो हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में बहुत विचित्र बातें बताई हुई है, उनका खूब अच्छी तरह से अध्ययन करें तो बहुत विलक्षण बात होती है। अभी एक नई बात बताऊं मेरे को मिली है, आप लोग जानते होंगे न जानते होंगे पता नहीं। गीता पढ़ते हुए मेरे को बहुत वर्ष हुए हैं, गीता कंठस्थ कर हो गई पढ़ते पढ़े पाठ करते करते, इसके भी बहुत वर्ष हो गए। सम्मत 1984 में मैंने देखा तो गीता मेरे कंठस्थ मिली, ऐसे 1972 से गीता के परिचय है मेरे। सम्मत 1972 न तो भाषित सूर्य, यह श्लोक सिखाया था मेरे पहले पहले। अब उसमें मेरे वर्षों से एक शंका थी, 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा मैं समग्र रूप का वर्णन करूंगा। ये समग्र रूप का वर्णन कर दिया, इसका वर्णन हुआ, व्याख्या की, बहुत वर्षों तक विवेचन करता रहा, परंतु इधर ध्यान नहीं गया। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासिष्ट अस्तुनु, निसंदेह रूप से मेरे समग्र रूप को तो अनजान लेगा, वो मैं तेरे बात बताता हूं तू सुन। यज्ञात्वा ने भूयो न ज्ञातव्य अवशिष्यते, जिसके जानने के बाद जानने के लायक कोई बात रहेगी ही नहीं, ऐसी बताई और इस पर विचार किया और बहुत मनन किया और व्याख्यान दिया और टीका लिख दी। गीता पर साधक संजीवनी टीका लिख दी। टीका लिखने पर भी समझ में नहीं आई बात। आप आज ये करेंगे टीका की लोग प्रशंसा करते हैं, अच्छी लिखी। ऐसे विद्वान भी राजी होते हैं। सब तो राजी नहीं हो सकते परंतु बहुत राजी होते हैं। इसमें समग्र रूप का वर्णन किया। इतना वर्णन करने पर भी सातवें अध्याय के अंत में दो श्लोक आते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म सकर्म साखिलम साधि भूतादि दैव माम साधि यज्ञ ये विदु प्रयाण काले विषमान ते विदु युक्त चेतसा। ये दो श्लोक गीता लिखने पर भी मेरे संतोष नहीं हुआ। मैंने भी ठीक लिख दिया, ऐसा नहीं लिख तो दिया जैसा टीकाओं में सुना है, जैसा संतों से सुना है, अपने जैसे व्याख्या की है उसके अनुसार लिख दिए। पर मन में बात खटकती रही कि इसका क्या तात्पर्य है, दो श्लोक लिखे इसका क्या तात्पर्य है और दोनों अलग अलग है। ये और ते कहा है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित तंतिये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म साकार कर्म साखिलम साधि भूतादि दैवम साधि यज्ञ से ये विदु प्रयाण कार्य समान ते विदु। तो हमने किया कि ये समग्र रूप का वर्णन है दो श्लोकों में, परंतु दोनों श्लोकों का ठीक ठीक विचार मन में बैठा नहीं। कई टीकाएं देखी, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ये अभी विचार से मेरे बैठी है बात, यहां आए पीछे कह दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बात क्या है, ये दो श्लोक कहे गीता में तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जो दो निष्ठा बताई, ज्ञान योगिन संख्यानाम कर्म योगिन योगिनाम, तो दो निष्ठा बताई। तो दो निष्ठाओं का वर्णन पहले पहले अध्याय में हुआ है। दूसरा पहला अध्याय मान दूसरा अध्याय ऐसा थे गीता सांख्य बुद्धि योगे तुम्हारा सुनो। तो दो निष्ठा कही, तीसरी निष्ठा भक्ति ही कही नहीं। तो ये टीका लिखते हुए समझ में आ गई थी लिखने से पहले भी कि भक्ति है ये मनुष्य की निष्ठा नहीं है, कर्मयोग और ज्ञान योग मनुष्य की निष्ठा है और ये भगवान निष्ठा है। निष्ठा उसी भगवान में है, अपनी धारणा अपनी निष्ठा नहीं, अपना विचार नहीं है, ये तो भगवान के ऊपर ही निर्भर होकर चलने वालों की भक्ति है। इस वजह से दो निष्ठा में ये नहीं आई। ये बात गीता लिखते हुए समझ में आई थी, परंतु यह दो श्लोक है इसका तात्पर्य ये हुआ कि 29वां श्लोक है उसमें ब्रह्म अध्यात्म और कर्म तीन बात का वर्णन हुआ है। अधिभूत अधिदेव अधि तीन का 30वां में वर्णन हुआ है। तो अधिभूत अध्यात्म कर्म और ब्रह्म का वर्णन हुआ, तो ये क्या है, ये दो निष्ठा का वर्णन है। ये बात अभी खिली है। दो निष्ठा जो कही थी सांख्य योग और कर्म योग, उन दो निष्ठाओं का वर्णन इसमें आया कि जो ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, कर्म को जानते हैं। अध्यात्म को जानते हैं जीवात्मा के स्वरूप को, ब्रह्म को जानते हैं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को, और कर्म जानते हैं कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से किया जाए। तो ये दो निष्ठाओं का वर्णन 29वें में हुआ है और भक्ति की जो निष्ठा है भगवत निष्ठा उसका बताया अगाड़ी। तो इसमें फर्क क्या आया कि माम आश्रित यतन्ति, ये मूल में मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं वो समग्र ब्रह्म को जानते हैं, और मेरा आश्रय लिए बिना करते हैं वो दो निष्ठा में रहते हैं, भक्ति निष्ठा उनको जल्दी नहीं मिलती है, ये भाव रहा। परंतु यहाँ भगवान ने विलक्षण बात बताई कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय ले यत्न करते हैं, तो इसमें विलक्षण बात आई कि समग्र रूप का उनको ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म का ज्ञान है, एक निर्गुण निराकार का ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, जीवात्मा का ज्ञान है, और कर्म है ये कर्मयोग का ज्ञान है। तो ये दो निष्ठा तो इधर आ गई, पर भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तो समग्र ब्रह्म को जान जाता है। तो ये दो निष्ठा, योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा, सांख्य निष्ठा से ब्रह्म का ज्ञान होता है, अध्यात्म तत्व का ज्ञान होता है, और कर्मयोग से कर्मों का तत्व का ज्ञान होता है। दो निष्ठा इसमें कही, वो साधि भूतादि साधि ये साधि यज्ञ तीन बताया, तो उसमें साधि भूताधि दैवम साधि यज्ञ, तो साधि 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 ये कहा, तो ये सगुण रूप का वर्णन है और ये परमात्मा के भक्ति का वर्णन है विशेषता में। तो पहले श्लोक में अंत में प्राप्ति हो जाए ये मन, दूसरे श्लोक में कहता प्रयाण काले विचित मानते विदुर युक्त चेतसा, तो साधि भूतादि साधि यज्ञ इनको जानने वाला अंत में मेरे को जानता है, ये भगवान ने फल बताया। तो ये दोनों श्लोक मिल करके ये बताई बात, ये बात पहले खुली थी, पर दोनों निष्ठाओं तो आ गई पहले श्लोक में और भक्ति निष्ठा आई दूसरे श्लोक में, ये विभाग वर्षों तक समझ में नहीं आया और किसी टीका में मिला नहीं। मेरी जितनी खोजी कही टीका तरह तरह से लगा, पर हमें संतोष नहीं हुआ ठीक तरह से। और फिर ये बात लगी कि इससे हमें संतोष हो गया कि ये बात ठीक ढंग से बहुत बढ़िया बात बताई है। और इसमें ये बात बताई जो पहले भी कुछ दिन पहले हुई थी, मथानीय सत्संग हुआ उस समय में ये बात मेरे समझ में आई थी कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ज्ञान योग से गुणातीत होता है, कर्मयोग से भी गुणातीत होता है, वो तत्व को जानता है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही निर्गुण तत्व की तरफ जाते हैं। अब निर्गुण तत्व की तरफ जाने में कर्मयोग से भी प्राप्ति हो जाती है और सांख्य योग से भी। अब सांख्य योग से प्राप्ति होती है वो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और कर्म से वो निर्गुण तत्व की प्राप्ति जो एक ही हो जाती है उसकी प्राप्ति होती है। पर सगुण की प्राप्ति की इसमें बात नहीं आई। ये पांचवा अध्याय में दो दिशा गई, एक तीसरा, एक पांचवा, एक अठारवा, तीन अध्याय में आदम में ज्ञान योग, ज्ञान योग कर्म योग की बातें आती है, अर्जुन ने प्रश्न किया है, और भक्ति योग की ये शेष में आई। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है ये भक्ति योग में ही आया है, ज्ञान योग में गुणातीत नाम आया है, और कर्म योग में समता आई है, जो छठे अध्याय के ये पांच छह सात आठ नौ इन श्लोकों में बताया है कर्म योग से सिद्ध पुरुष। तो अंतिम नौवां है सुर निमित्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वपिज पापेशु संबुद्ध विशेषते, ये कर्मयोग से सिद्ध होता है उसे पुरुष लक्षण है। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये दो मनुष्य की निष्ठा है, साधक की खुद की निष्ठा है, इनमें भी फर्क है। और वह भक्ति योग है वो भगवान के आश्रित होता है, साधन भी भगवान के आश्रित और साध्य भी भगवान के आश्रित, वो केवल भगवान का आश्रय लेके चलता है, वो भगवत भक्ति होती है। वो चार प्रकार के भक्त बताए हैं, उनकी भक्ति निष्ठा ये होती है। अब इसमें फर्क बता मैं, कर्मयोग की निष्ठा है ये लौकिक है बिल्कुल, पुरुष हो लोके और क्षिप्रगी मानुष लोके, ऐसे लोक शब्द आया है इनमें, तो ये दोनों लौकिक आई हुए है। और भक्ति है वह लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है, शब्द अलौकिक नहीं आया इसमें। और सांख्य योग कर्मयोग में लौकिक शब्द आया है, उस लौकिकों में भी ये बात है कि जो कर्मयोग है ये भौतिक भौतिक साधना है, जो भूत है पांच भूत का बतना है, और ये आध्यात्मिक साधना है जो ज्ञान की साधना है, जो अध्यात्म जीव जितना ये भौतिक है इनके भीतर जो जीवात्मा खुद स्वयं साक्षी कूटस्थ कहते हैं वो अध्यात्म है। तो ये अध्यात्म निष्ठा ये है लौकिक होते हुए भी चेतन की बात, और वो कर्मयोग है वो जड़ की बात। तो जड़ की चिंता करते भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अध्यात्म तत्व वाले भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये दो निष्ठाएं बताई, परंतु भक्ति की निष्ठा विचित्र बताई, जिसमें महात्मा सुदुर्लभ है ये पद एक बार आएगा, वो महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसे महात्मा दुर्लभ है ये बात ज्ञान योग से और कर्मयोग से नहीं होती है, ये भक्ति योग से होती है। और महात्मा कैसा कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, ये इसमें बात आई, ये बहुत विलक्षण बात हमें लगी। गीता भर में गीता का सिद्धांत सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें तात्पर्य है। इसमें जड़ चेतन स्थावर जंगम ये नहीं है भेद, परमात्मा से ही पैदा हुआ है संसार सबका सब, क्योंकि परमात्मा आप स्वयं ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। एको हम बहुश्याम प्रजाय, एक ही मैं बहुत रूप से प्रजित हो जाऊं, प्रकट हो जाऊं, ऐसे भगवान ने कहा है। तो ये सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। अब उस परमात्मा के स्वरूप में जड़ और चेतन दो दिखते हैं, तो ये बात परा अपरा प्रकृति सातवें अध्याय में बता भी, सातवें में ही वासुदेव सर्वम बताया। तो अपरा प्रकृति जड़ है, जड़ और परा प्रकृति चेतन है। जीव भूता महाभाव एदन धर जगत, वही ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, ये जीव बताया। तो ये देव का जो स्वरूप को समझना है, ये आध्यात्मिक साधना है, कर्मयोग है, ये भौतिक साधना है, और दोनों साधनाओं से एक तत्व को प्राप्त होता है, ये गीता का आशय है। परंतु जो सबसे ऊंचा बताया वो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, तो उसमें ज्ञानवान शब्द आता है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेषते, ज्ञानी है नित्य युक्त है, तो इसमें टीकाकार ने ज्ञानी करके तत्व ज्ञान लिया है। जो जीवन मुक्त पुरुष है उसको लेते हैं ज्ञानी शब्द से, बहुत विस्तार विवेचन करते हैं। परंतु ज्ञान या क्या है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब कुछ सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, इस ज्ञान को प्राप्त करता है भक्ति योगी। चार तरह के भक्त है, उनमें ज्ञानी भक्त है ये। ज्ञानी तत्व ज्ञान जीवन मुक्त का नाम नहीं है, यहाँ ज्ञानी भक्त का नाम वर्ण है। चतुर्विधा भजन्ते माम, तो भक्ति में ये विलक्षणता आती है कि वासुदेव सर्वम, उसके सामने फिर ये स्थावर और जंगम और जड़ और चेतन ये भेद नहीं रहता है। हमारी जो आसक्ति है, हमारी कामना है, हम सुख और संग्रह को चाहते हैं, इसलिए ये भेद जड़ और चेतन का भेद दिखता है। जब ये हमारे मन से आसक्ति कामना मिट जाती है तो फिर जड़ और चेतन दो भाग नहीं दिखता। ये श्वेत जर अंड जर उद्भेद जर जरायु चार खानी है, 84 लाख जूनी है, और जड़ और चेतन दो है, स्थावर और जंगम जीव दो तरह के हैं, चलने फिरने वाले वृक्ष आदि स्थिर रहने वाले, और सब ये और जड़ जैसे ये थम्बा है, ये पंडाल है, कपड़ा है, ये है। तो ये चीज सबकी सब सच्चिदानंद घन परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। ये कब मिटता है? जब राग और द्वेष हृदय से निकल जाते हैं तब ये ज्ञान होता है, नहीं तो पहले जड़ और चेतन का विवेक होता है। विवेक होते हुए विवेक की प्रधानता रहते हुए प्रधान चलता है, तो विवेक की प्रधानता चलने में एक बड़ी बाधा लगती है। आप क्षमा करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, मैं मेरी भावना कहता हूँ, धारणा मेरी समझ का परिचय देता हूँ, मेरे कुछ तत्व है नहीं, मेरी कैसी समझ है वो बताता हूँ आपको, वो पोल निकल जा देख लो आप, तो ऐसी बात है। इसमें एक विलक्षण बात है, क्यों मनु अपने परिचय दे, वो क्या करे, अपने जैसे माजना है वैसे ही बोलेगा। तो इसमें ऐसी विलक्षण बात मालूम थी, बरसों तक मेरे विवेक का ही विशेष प्रभाव रहा, और विवेक प्रधान ही पुस्तकें लिखी, गीता में लिखा तो उसमें विवेक की प्रधानता लिखी। परंतु एक मेरे को बात अभी मालूम हुई है थोड़े वर्षों से कि विवेक मार्ग में उतनी उन्नति नहीं होती जितनी विश्वास मार्ग में होती है। जीव के बहुत विलक्षणता उसका अनुभव होता है विवेक मार्ग में। अध्ययन भी मैंने बहुत किया है, आचार्य तक पुस्तक पढ़ी है, परीक्षाएं दी है, और अभ्यास भी किया है, संग भी किया है, प्रश्नोत्तर किया है, वर्षों बीते हैं, परंतु अभी थोड़े वर्षों से ये बात मालूम हुई विवेक करने से उसमें कुछ कमी रहती है। ध्यान दें आप लोग, क्या कमी मालूम थी कि विवेक होता है दो वस्तुओं का, मानो जड़ और चेतन, एक जड़ है एक चेतन है, ये दो बात होगा तब विवेक होगा, और तत्व ज्ञान होने पर विवेक नहीं रहता है, बोध हो जाता है। इसका वर्णन साधक संजीव ने खूब किया है, पर साधक संजीव ने लिखने के बाद ये बात मालूम हुई है, जो अभी 2-3 वर्षों से ही तीन चार हो गया होगा, पूरक याद नहीं है। उसे मालूम हुआ कि जब तक साधक के मन में एक चिन्मय तत्व के सिवाय जाए कल्पना रूप से भी जड़ है, एक सत्ता रहती है, तो तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है, क्योंकि उसमें जड़ चेतन दो हो जाते हैं, तो दो हो जाए जड़ की सत्ता रहती है, तो सत्ता जब तक मन में रहती है तब तक उस तत्व की प्राप्ति में देरी होती है। तत्व की प्राप्ति होने में जड़ चेतन का विभाग नहीं रहता है, विवेक नहीं रहता, विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, उसमें जड़ का त्याग होता है, परंतु फिर भी जड़ की सत्ता है जो त्याज्य है। पर विश्वास मार्ग में ये चीज नहीं है, जड़ता जो त्याज्य होती है ये नहीं है। बहुत वर्ष बीता है मैंने इस विवेक मार्ग में, मैं अपनी दृष्टि से कमी नहीं रखी है, जानने की, पढ़ने की, पुस्तक पढ़ने की, विचार करने की, चिंतन करने की, अभ्यास करने की, विशेष मैंने नहीं किया है, परंतु मेरे तरफ से मैंने खूब उद्योग किया है। परंतु ये बात विलक्षणता से मिली कि विवेक में जब तक कोई सत्ता है तब तक मन को जो एकाग्र करना चाहते हैं वो एकाग्र होकर निरुद्ध हो जाए, ये उसमें कठिन है। पातंजल योग दर्श में निरोध की बात आई है, बहुत बढ़िया बात आई है, परंतु जब तक जड़ की सत्ता माथे में भी रहती है कि एक जड़ चीज है, एक चेतन चीज है, वो जड़ की सत्ता जब तक रहती है तब मन सर्वथा निरुद्ध नहीं होता। सत्ता और महत्ता ये चीज बड़ी बाधक है। एक हम सत्ता मान ली कि ये चीज है, एक सत्ता अलग, और जिसकी महत्ता बड़ी काम की चीज है, ये सत्ता और महत्ता बड़ा धोखा देती है, ये साधक के लिए बहुत भयंकर धोखा होता है इससे, सत्ता और महत्ता का। वो सत्ता और महत्ता, महत्ता न रहे तो सत्ता इतनी दुखदायी नहीं होती, बट इसमें महत्व बुद्धि है कि दो चीजों में, एक तो रुपया पैसा, एक भोग, एक संग्रह, एक सुख, ये दो चीज बहुत ही घातक है साधक के लिए, बड़ी घातक है। बहुत दूर तक जाने पर भी ये जल्दी मिटती नहीं है, ये मैंने देखा है, औरों से भी बातें हुई, औरों को भी देखा है, पढ़ा है, पुस्तकें भी पढ़ी है, उनके पढ़ने पर भी बड़ी कठिन बात है, बड़ी गहरी बात है। अच्छे अच्छे ग्रंथ जो वेदांत के कहे जाते हैं, और मैंने श्रद्धा भी की है, पढ़ाई भी की है, पढ़ा भी है, और क्षमा मांगते हूँ मैंने पढ़ाया भी है, खुद भी मैंने पढ़ा है वेदांत के ग्रंथ, और वेदांत के ग्रंथ मैंने पढ़ाए भी हैं दूसरों को, क्यों पाठशाला पढ़ाने का मेरा काम पड़ा है। पढ़ाने पर भी विलक्षण बात है, वो वेदांत की दृष्टि से तो भक्ति है वो एक तरह का भ्रम है ऐसा आया है, परंतु विचार किया, गीता का सोचा, तो गीता के बीच में ये बात नहीं है। जो विश्वास मार्ग से रहती है तब तक मन चंचल रहता है, और सत्ता ही दूसरी नहीं है, एक परमात्मा ही है, साधि भूतानि, अधिभूत भी परमात्मा है, अधिदेव भी परमात्मा है, अधि यज्ञ भी परमात्मा है, और ब्रह्म कर्म अध्यात्म भी परमात्मा है, कर्म भी परमात्मा है, और अध्यात्म तत्व भी परमात्मा है, और ब्रह्म भी परमात्मा है। ये सब को ठीक तरह समझने से जो बोध होता है वो बोध अंग से नहीं होता। परंतु भगवान की एक विचित्र विधान की बात है कि भगवान केवल नाम राम 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 और कुछ नहीं, राम राम में लग जा तो सिद्ध हो जाएगा, भगवान के ब्रह्म तत्व को ले तो सिद्ध हो जाएगा, अध्यात्म तत्व को ले तो सिद्ध हो जाएगा, और भौतिक साधना कर्म करे तो सिद्ध हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। परंतु भगवान का समग्र रूप जब समझ में आएगा तो ये मन की चंचलता दूसरी यह सब उछल कूद मिट जाती है, क्योंकि क्या सोचेगा, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमान मिट जाए, परमात्म तत्व का बोध हो जाए, और एक परमात्मा सिवा सत्ता रहे नहीं किसी तरह से ही, उसमें फिर मन जहाँ जाए वहीं समाधि है, मन को एकाग्र करना, निरुद्ध करना ये पड़ता नहीं है, सब समय में परोसवात तत्व के जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसी विलक्षण बात है। तो ये साधि भूतादिदेव ये दो जो श्लोक है, पहले समग्र कहने की प्रतिज्ञा की, फिर अपरापरा दो प्रकृति बताई, दोनों प्रकृतियों से जीव पैदा होता है, क्योंकि उसमें जड़ चेतन दो का अंश है, जैसे माता पिता के अंश से ये शरीर पैदा होता है, ऐसे प्रकृति और पुरुष जो है इसका वर्णन किया है, ऐसे पैदा होते हैं, ये बात सब बताई है। विश्वास मार्ग में भगवान के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो ये जैसे रामायण में अनिच्छता वे बरियाई, भक्त के यहाँ जीवन मुक्ति का सुख न चाहते हुए जबरदस्ती आ जाता है। जो भक्ति है वो माँ है, ज्ञान और वैराग्य बेटा है, ये भागवत वर्णन आया है। ऐसा भागवत एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को जो समझाया है बहुत विचित्र समझाया। 28-29 दो अध्याय तो साधकों के लिए गजब ही है, बहुत ही विलक्षण अध्याय है। तो वे ऐसी बात बताई, उसमें सब परमात्मा स्वरूप है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यया आत्मनिशया परिपर्शन परमेत सर्वथा मुक्त संशय, एकादश का श्लोक है ये। तो उसमें कहते हैं सर्वम ब्रह्मात्मकम, सब ब्रह्म है। ये थम्बा ये भी ब्रह्म है, ये मूर्तियां भी ब्रह्म है, ये कपड़ा भी ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन है ये। तो ज्ञान होने पर ये चिन्मय तत्व मालूम होता है, त्याग असली बोध होने पर जड़ता नहीं रहती। जड़ता अपनी बुद्धि में होने से जड़ तत्व दिखता है, जड़ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और महत्व तो है ही नहीं उसमें। परंतु रुपए पैसों को, मान आदर को, सत्कार को, आराम को आदर देने के कारण से साधक बहुत भटकते हैं, जल्दी तत्व तक पहुंचते नहीं। तो ये बातें मेरे को गीता से मालूम हुई है, ऐसी विलक्षण बातें है। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, आपने कोई शंका हो तो मेरे से पूछ लेना, संक्षेप से बात बताई है। तो ऐसे गीता के अर्थों को देखें तो बहुत विचित्रता दिखती है, हमें अलौकिकता दिखती है। टीकाकारों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है, परंतु सब जगह संतोष नहीं होता है। मैंने वैष्णव आचार्यों की भी टीका देखी है, श्री रामन भाष्य देखा है, शांकर भाष्य भी देखा है, और इनके मत मतांतर की टीकाएं देखी है। विशेष अद्वैत संप्रदाय के ग्रंथ मैंने विशेष अध्ययन किया, इतना द्वैत का अध्ययन नहीं किया है मैंने, अपने आप कुछ देखा है। परंतु इनमें गीता दोनों से विलक्षण है, अद्वैत विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद, ये पांच वैष्णवों के जो मत है उन मतों से विलक्षण आ जाती है। समग्र में सब आ जाएंगे, कोई बाकी नहीं बचेगा, ऐसी बात गीता में है। और फिर मैं तो वो खोजता ही रहता हूँ, ढूंढता ही रहता हूँ। मैंने तो वो चाहे अभिमान से कह दो चाहे धारणा से, मैंने कह दिया था कुछ वर्ष पहले ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में, कहा था 30 नवंबर में सब व्याख्यान देते हुए कि 5-7-10 वर्ष रह गया तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल बता दूंगा। तो वो बात मेरे समझ में आई, अब भी ऐसी दिखती है कि वो बहुत सुगमता से उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कई लोग मानते हैं कि अधिकारी हो, मैं अधिकारी में ज्यादा नहीं मानता, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जो उत्कंठित हो जाए केवल उस परमात्म तत्व को जानो, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, मैं जानता नहीं, मेरा तो कल्याण हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ऐसी उबलती हुई इच्छा जोरदार हो जाए, पूरा अधिकारी हो गया वो। और अंतगण शुद्धि के लिए जड़ता है तो आकर्षण में रहे, अंतगण पूरा शुद्ध हो गया, जो उत्पत्ति विनाशशील की तरफ आकर्षण मिट जाए अंतगण शुद्ध हो गया, ये एकदम निर्मल हो गया, और फिर उस तत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये मल विक्षेप आवरण जुजार बताया, ये मैंने पढ़ाया की है, पढ़ा भी है, औरों को पढ़ाया भी है, मन पढ़ने पर भी बात मूल में ये मती है, जो उत्पत्ति विनाशशील की तरफ जो आकर्षण है ये महान बाधक है। और ये दो चीज है, एक तो संग्रह करना और एक सुख भोगना, ये दो हो गई। सूर्य प्रसुता नाम 44वां श्लोक दूसरे अध्याय में गजब का श्लोक है, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रत साम व्यवसायत्म बुद्धि समाधो न विधीयते। परमात्म तत्व में निश्चय करने वाली बुद्धि उसकी नहीं आती जो भोग में रहा ऐश्वर्य आश्रित है, संग्रह करना और सुख भोगना, ये बड़ी भारी बाधा है परमात्मा की प्राप्ति में। और ये मिट जाए तो बहुत सुगम सीधी परमात्मा प्राप्ति हो जाए, और केवल उसकी उत्कट अभिलाषा हो जाए, केवल इच्छा हो जाए, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, ऐसी वो अधिकारी हो जाएगा। केवल उस तत्व को जानना चाहता हूँ, अधिकारी इतना काफी है। विवेक और विवाद विचार श्रद्धा समाधि समिति मुमुक्षुता तुझे सब जितने कहे वही 8 अंतरंग साधन बताए हुए, सब सब के सब आ जाएंगे, केवल ये इच्छा हो जाए कि मेरी मुक्ति हो जाए। गीता का अध्ययन करने में भाई बहन लगे, बालकों को याद करावे तो ये भी नहीं शुरू हो जाएंगे, तो अगर बहुत तत्व को जान सकते हैं अगर जिज्ञासा हो जाएगी तो। इसमें कोई शंका हो तो
आप 11:30 बजे जाना,
आज 11:30 बजे से ही है। क्योंकि आज राजगद्दी होगी भगवान का, वो आज उत्सव होगा ना राजगद्दी का, तो राजगद्दी का उत्सव होता है तो उसमें समय लगता है, पास भी बड़ा है तो 11:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि सदा होता देरी से, तो आज शाम को देरी न हो जाए इस वास्ते आज जल्दी लिखा है, तो भाई बहन लोग जल्दी आवे। नारायण नारायण नारायण। और क्या है अब?